सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी,
सुनो कहानी,
कहानी
सुनो कहानी,
सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी,
सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी,
सुनो कहानी,
देखो है कहानी में क्या,
सुनो कहानी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنو کہانی کون سا پروگرام ہے
سنو کہانی
اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کہانی سنتے رہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے آپ کو کوئی نہ کوئی کہانی ہم سناتے ہیں اور انٹرسٹنگ کہانی بھی سناتے ہیں ایسے واقعات بھی سناتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہانی بھی سناتے ہیں اور بڑی مزیدار کہانی آپ کو سناتے ہیں تو یقیناً آپ کہانی مزے سے سنتے بھی ہوں گے توجہ کے ساتھ بھی سنتے ہوں گے اور صرف کہانی سنتے نہیں ہوں گے بلکہ اس سے جو ہمیں لیسن مل رہا ہے اس کو بھی آپ پک کرتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس لیسن کے بارے میں ضرور بتاتے ہوں گے تو آج بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک کہانی سنائیں گے اور آج کی کہانی پتہ ہے کن کے بارے میں ہونے والی ہے آج کی کہانی ہونے والی ہے ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی کس میں ہاں پوری دنیا میں حکومت کی تھی اور صرف یہ خاصیت نہیں ہے ان کی اس کے ساتھ ساتھ وہ پرسنالٹی ایسی ہیں کہ اللہ کریم نے ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے ہاں ان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے کیونکہ وہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے ہیں ولی ہیں فرینڈ آف اللہ جو ولی ہوتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست کیا مطلب ہوتا ہے ہاں جب بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی کی بات ہوگی اللہ کے ولی کی سٹوری سنائی جائے گی تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ کیا مطلب ہے اس کا اللہ کا ہاں اور اگر بہت سارے ولی ہوں ولی کی جمع ہے اولیاء کیا جمع ہے
اولیاء
اس کا مطلب ہے فرینڈز آف اللہ یعنی اللہ کے دوست بہت سارے دوست تو وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ نیک بندے ہیں تو انشاءاللہ اب کیا کیا ہونے والا ہے کہانی کے اندر وہ انشاءاللہ آپ کو کہانی میں پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم کہانی شروع کرنے سے پہلے درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور درود شریف کی فضیلت بھی سناتے ہیں آج بھی آپ کو میں درود شریف کی ایک فضیلت سناؤں گا شارٹ فضیلت ہے وہ آپ نے یاد کر لینی ہے ٹھیک ہے یاد کر لینی ہے تاکہ کل کو آپ کہیں پہ بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے درمیان یا اسکول میں بیٹھتے ہیں نا مدرسے میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ان کو درود پاک کی فضیلت سنائیں اور ان کو ترغیب دیں انکریج کریں کہ وہ بھی درود پاک پڑھیں کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ کریم تم پر رحمت بھیجے گا
سبحان اللہ
پھر سنبھل کر پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین 1000 years ago ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کا نام تھا اسکندر کیا نام ہے ہاں اسکندر ان کا ایک لقب جس سے وہ مشہور ہیں وہ ہے ذوالقرنین کہانی کچھ یوں ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے حضرت اسکندر ذوالقرنین کی حکومت تھی پوری دنیا پر
پوری دنیا پہ
پوری دنیا پہ
جی ہاں آپ اکیلے پوری دنیا پہ بادشاہ تھے دیکھیں یہ جو کائنات ہے یہ دنیا ہے یہ سورج ہے یہ چاند ستارے مجھے آپ کو سب کو کس نے بنایا ہے
اللہ تعالیٰ
اللہ پاک نے بنایا نا تو اللہ پاک جسے چاہے کسی چھوٹی سی جگہ کا حکمران بنا دے یعنی کنگ بنا دے اور چاہے تو پوری دنیا کا کنگ بنا دے تو ہاں پوری دنیا کا تو اللہ پاک نے حضرت اسکندر ذوالقرنین کو پوری دنیا کا کنگ بنایا تھا آپ نا آپ کی مختلف جرنی رہتی تھی سفر کرتے تھے آپ ادھر ادھر آپ ईस्ट में भी गए हैं, ईस्ट है ना, डायरेक्शन हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन याद होंगी आपको। तो आपकी जो जर्नी थी वो दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक रही है। पूरी दुनिया के बादशाह थे ना, अल्लाह ने ताकत भी दी थी, पावर भी दी थी। तो आपने ईस्ट का भी सफ़र किया है, वेस्ट का भी सफ़र किया है। इसी तरह आप एक बार सफ़र करते करते नॉर्थ की साइड पे आप एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पर दो बड़े बड़े पहाड़ थे। तो आपने एक बात नोट की कि पहाड़ के इस साइड पे याजूज माजूज रहते हैं और पहाड़ के इस साइड पे दूसरी साइड पे एक कौम रहती है। तो जो कौम रहती थी ना, जो लोग रहते थे दूसरी साइड पे, तो उन्होंने जब आपको देखा तो आपसे एक शिकायत की, शिकायत भी की और एक रिक्वेस्ट भी की। शिकायत ये की कि यहाँ पर याजूज माजूज रहते हैं और वो आते हैं हमें तबाह कर देते हैं। जी,
ये याजूज माजूज कौन है?
हाँ, ये याजूज माजूज कौन है, यकीनन किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन भी कहानी सुनते हुए उनके जहन में सवाल आ रहा होगा, जो बच्चे सुन रहे हैं कि ये याजूज माजूज कौन है। अभी मैं आपको बताता हूँ। वो पहले मैं बता रहा था कंप्लेन का, कंप्लेन के बारे में और रिक्वेस्ट के बारे में। कंप्लेन ये की कि याजूज माजूज हैं यहाँ पर पहाड़ के उस साइड पर, वो आते हैं तबाही फैला देते हैं, लोगों को भी खा जाते हैं, जानवरों को खा जाते हैं, हमें तबाह कर देते हैं, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, तकलीफ देते हैं हमें, टॉर्चर करते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है, आप एक बड़ी सी दीवार बना दें। क्या बना दें? बड़ी सी
दीवार।
आप बताएं, हज़ारों साल पहले दो बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान दीवार बनाना आसान काम है? नहीं ना, कितना मुश्किल काम है। उन्होंने ऑफ़र भी की कि एक काम करें, हम आपको बहुत सारा ख़जाना देंगे, बहुत सारा ख़जाना देंगे, पैसा देंगे और आपको बहुत सारा माल देंगे, लेकिन आप हमारा ये काम कर दें। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? जवाब से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये याजूज माजूज कौन है। देखें, याजूज माजूज को इंग्लिश में कहते हैं गोग मगोग। क्या कहते हैं?
गोग मगोग।
ये इंसान है, जिस तरह हम इंसान हैं ना, ये इंसान है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम है। हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर फ़ख्र है, प्राउड है कि नॉन मुस्लिम हैं। और ये पता है क्या, ये जितने भी जानदार होते हैं ना, लिविंग थिंग्स, जितने भी जानदार होते हैं उनको खा जाते हैं, इंसानों को भी खा जाते हैं, शेर को भी खा जाते हैं, ये सारे जानदारों को खा जाते हैं। और ये जो स्प्रिंग वेदर है, मौसम बहार होता है ना, जिसमें प्यारे प्यारे से फूल निकलते हैं, फसलें खिलती हैं, है ना, कितना मज़े का मौसम होता है, उसमें ये बाहर निकलते हैं और जो फ्रेश आइटम होते हैं ना, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश चीज़ें हैं, उनको खा जाते थे, और जो खुश्क आइटम होते थे उनको उठा के ले जाते थे। एक और बात इनके बारे में बताऊं, वो ये है कि ये जो याजूज माजूज है ना, इनके जो पंजे हैं ना, पंजे पता है किसे कहते हैं? पाँव के नाखून। इनके पंजे और इनके जो दांत हैं वो जानवरों की तरह हैं, ये इंसान, लेकिन इनके पंजे और दांत जानवरों की तरह हैं। और इनके जिस्म पर बड़े बड़े बाल हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना अपने जिस्म को कवर करने के लिए, ढांपने के लिए, और आसान उर्दू में छुपाने के लिए। तो उस तरह उनके जिस्म पे बड़े बड़े बाल हैं, इतने बड़े बड़े बाल हैं कि उनकी जो बॉडी है ना, वो जो स्किन है, वो उनके बालों से छुप जाती है। तो ये हैं याजूज माजूज, बहुत ख़तरनाक लोग हैं। आगे क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो हज़रत ज़ुल्करनैन को उन्होंने ऑफ़र दी थी कि पैसे ले लें, लेकिन आप यहाँ पर दीवार खड़ी करके हमें इनसे सेव कर लें। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारे पैसे
नहीं चाहिए,
माल और दौलत नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे तो पूरी दुनिया का बादशाह बनाया है। अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था ना, तो बहुत माल दौलत अल्लाह ने दिया है, तो पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपने कहा मुझे तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत चाहिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ, जिस्मानी कुव्वत चाहिए। अच्छा, जिस्मानी कुव्वत क्यों चाहिए?
ताकि उनके साथ पहाड़ बने,
पहाड़ बनाए,
दीवार।
अच्छा, दीवार बनाए। हाँ, जिस्मानी कुव्वत इसलिए चाहिए ताकि दीवार बनानी है ना इतनी बड़ी, तो दीवार मिलके बनाएंगे। तो दीवार बनाने के लिए वो मेहनत करें हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ और दीवार पूरी बनवाएं, उसकी तामीर करवाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि बहुत सारे लोहे के पीसेस ऑफ आयरन, लोहे को आयरन कहते हैं ना, आयरन के जो पीसेस होते हैं ना, वो जमा करो बहुत सारे। और आपने फरमाया कि ज़मीन की खुदाई शुरू कर दो। आपने कहीं देखा है बिल्डिंग बनती हुई तो ज़मीन की खुदाई होती है? जब बहुत सारी ज़मीन की खुदाई होती है तो फिर क्या होता है? किसी ने देखा है? नहीं देखा?
देखा।
क्या होता है? नहीं पता, देखा भी है और पता भी नहीं है
जी।
आपने भी नहीं देखा? देखिए, जब बहुत सारी ज़मीन की खुदाई होती है ना, तो नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब आप देखिएगा, आपने देखा होगा, कभी नोट नहीं किया होगा, अब आप नोट कीजिएगा, जब बहुत गहरी ज़मीन खोदते हैं तो जितना ऊपर पानी होता है उतना जल्दी निकल जाता है। तो पानी निकलना शुरू हो गया जब खुदाई करवाई ना हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने, आपने वहाँ पर पत्थर जो थे ना वो डलवा दिए, पूरे पत्थर जो ज़मीन पानी निकला था उस पर पत्थर बिछवा दिए, स्टोन्स, और उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा आपने उस पर डलवा दिया। तांबा कहते हैं कॉपर को। और जिस तरह पानी होता है, पानी एक माय है ना, और पानी को जब गर्म करते हैं तो वो खोलने लगता है, लेकिन वो भाप बन जाता है। तो जो कॉपर है ना, ये एक तरह की धात है, मेटल है, और ये सख्त होती है, सख्त, जैसे पत्थर कहते हैं सख्त होता है, तो जैसा लोहा भी सख्त होता है, तो कॉपर भी एक धात है, एक मेटल है, सख्त होता है। लेकिन जब इसको बहुत गर्म करते हैं, खूब बॉयल करते हैं, तो ये भी पानी की तरह हो जाता है। कैसे हो जाता है?
पानी की तरह।
अब आप इसको जहाँ चाहे डाल दें, जब ये ठंडा हो जाता है तो दोबारा कैसा हो जाता है? बिल्कुल
सख्त।
तो आपने वो जो पिघला हुआ तांबा है, ये जो कॉपर था वो पिघला हुआ, वो इन पत्थरों पर डलवा दिया, और वो मजबूत बुनियाद बन गई। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब जो है, जो लोहे के पीसेस मंगवाए थे ना, आयरन के पीसेस, वो एक स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर रखते रहो, और इतने ऊंचे तक रख दो कि जो पहाड़ की चोटी है ना, इतना ऊंचा तक, वहाँ तक लोहे के पीसेस हो जाए, यानी लोहे की एक वॉल खड़ी हो जाए। वो आपने लोहे के पीसेस रखवाने के बाद आपने उनमें कोयला और लकड़ी रखवा दी, और उसके बाद उसमें आग लगवा दी। मजबूत दीवार बनानी थी भाई, मजबूत दीवार तो ऐसी नहीं बनती ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी उस दौर में। तो आपने लोहे के पीसेस रखवाने के बाद लकड़ी रखवाई, और क्या रखवाया? नहीं,
कोयला
रखवाया। कोयला देखा, कोयला कैसा होता
है? सफेद कलर का,
हाँ, ब्लैक कलर का होता है कोयला, आग जल्दी पकड़ता है। वो रखवा के आग लगवा दी, जिससे जो वो था ना, जो लोहा था वो भी पिघल के और मजबूत हो गया। आपने वो आग लगवा दी, आग लगवाने के बाद जो कॉपर का पिघला हुआ कॉपर है ना, जो तांबा है, वो आपने उस पर डलवा दिया, उस पर पूरा डलवा के पूरी दीवार पर डलवा दिया। उससे वो दीवार बहुत मजबूत हो गई, और इस कौम के दरमियान और जो याजूज माजूज है, इन दोनों के दरमियान एक बड़ी सी मजबूत दीवार कायम हो गई। इस तरीके से वो जो लोग थे ना, जिनको याजूज माजूज तंग करते थे, वो याजूज माजूज की परेशानी से, उनके टॉर्चर से हमेशा के लिए महफूज हो गए। लेकिन बच्चों, हदीस पाक में आता है कि जब कयामत करीब होगी ना, तो फिर याजूज माजूज बाहर आ जाएंगे। लेकिन कैसे आएंगे, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को तोड़ते हैं। ये हदीस पाक में आता है, रोज़ाना दीवार को तोड़ते हैं। लेकिन जब दीवार तोड़ते, जब उनको सूरज की जो शुआएँ हैं ना, सनरेज़, वो नज़र आने लगती है ना, तो उनमें से कोई कहता है, चलो भाई बाकी कल तोड़ेंगे। बाकी कब तोड़ेंगे?
हाँ,
थक जाते हैं ना तोड़ तोड़ के, बाकी भाई कल तोड़ेंगे। अब वो चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, तो अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह पाक उस दीवार को दोबारा पूरा कर देता है, और पहले दिन से भी ज़्यादा उसको मजबूत बना देता है। अच्छा ये बताएं, जब वो अगले दिन आते हैं दीवार के पास, तो फिर क्या होता है?
वो दीवार और मजबूत हो जाती है।
जी माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। वो दीवार जब अगले दिन आते हैं, तो वो दीवार और भी ज़्यादा
मजबूत
हो जाती है, तो फिर तोड़ते हैं। लेकिन इस तरह रोज़ाना सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब कयामत करीब होगी ना, तो वो कहेंगे, उनमें से एक कहेगा, उनमें से जो एक बड़ा है ना, वो कहेगा, चलो इंशाल्लाह बाकी दीवार कल तोड़ेंगे, ये कह के वो चले जाते हैं। अच्छा आप बताएंगे कि इससे पहले वो क्या कहते थे, और अब उनके बड़े ने क्या कहा, क्या फ़र्क होगा? उन्होंने हाथ खड़ा किया, माइक दीजिएगा, सीधे हाथ से दीजिएगा।
अगर वो पहले कह देते ना कि इंशाल्लाह अब कल ही दीवार टूट जाएगी, तो वो दीवार टूट जाएगी।
यानी मैं जो बात बताने वाला हूँ, आपने पहले बयान कर दी, गुड माशाल्लाह जी। वो पहले पता है क्या कह रहे थे? वो कहते थे हम दीवार कल तोड़ेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह
नहीं।
लेकिन जब कयामत करीब होगी ना, तो एक दिन उनका बड़ा ना इंशाल्लाह कह देगा। इसकी बरकत ये होगी, जब वो नेक्स्ट डे आएंगे, तो जितनी उन्होंने दीवार तोड़ी थी ना, उतनी रहेगी, और बाकी जो दीवार बचेगी वो अगले दिन आके तोड़ देंगे, और वो बाहर निकल कर आ जाएंगे। जब वो बाहर निकल कर आएंगे, तो फिर खूब तबाही फैलाएंगे, वो लोगों को कत्ल करेंगे, लोगों को खा जाएंगे, मारेंगे, और जो है वो लोगों को खूब टॉर्चर करेंगे, फसलें तबाह कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत जो है वो तबाही फैलाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहि सलाम जो है वो उनसे नजात की अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे, तो अल्लाह पाक उनके यहाँ पे ये जो है ना गर्दन, उस पर कीड़े पैदा कर देगा एक अजीब से, उन कीड़ों की वजह से वो सारे के सारे फौरन मर जाएंगे। अब उतने सारे हैं वो इतने सारे होंगे कि ज़मीन पर जगह 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 उनकी लाश बिखरी हुई होगी, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो ज़मीन पर जगह जगह होंगी। फिर अल्लाह पाक कुछ परिंदों को भेजेगा एक किस्म के, वो परिंदे उनकी लाशों को उठाकर, अल्लाह पाक जहाँ चाहेगा वो जो परिंदे हैं वो उनकी लाशों को उठाकर लेकर चले जाएंगे। तो ये थी पूरी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी। इस कहानी से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ, बाकी आप सब दिमाग चलाना शुरू कर दें बिल्कुल जैसे कंप्यूटर की तरह। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो भी दुनिया में फसाद फैलाता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरों को तंग करता है और दूसरों को तकलीफ़ देता है, टॉर्चर करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो अल्लाह पाक उसे दुनिया में ही सज़ा दे देता है। यानी ऐसा नहीं कि आखिरत में सज़ा मिलेगी, दुनिया में भी उसका अंजाम बुरा होता है। जैसे भी हमने याजूज माजूज का सुना ना कि आखिर में उनके गर्दन में क्या पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे और वो उससे मर जाएंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ दुनिया में नहीं, ऐसे शख्स को अल्लाह पाक आखिरत में भी सज़ा देगा। तो दुनिया में भी अंजाम बुरा और आखिरत में भी अंजाम
बुरा।
तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? कभी भी दूसरे को परेशान
नहीं,
हाँ, कभी भी किसी का नुकसान
नहीं करना चाहिए,
कभी भी किसी का मजाक
नहीं उड़ाना चाहिए,
कभी भी किसी का बुरा नाम
नहीं लेना चाहिए।
अब एक और मैसेज, एक मैसेज बताना है आप में से किसी ने, कौन बताएगा? काउंटर शुरू हो रहा है, 3 2 अल्लाहु अकबर। याद नहीं आ रहा? मैं जैसे ही बताऊंगा ना आप कहेंगे ओ इतना आसान था, हमें बताना नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, हो जाता है। 1 बता देता हूँ। दूसरा मैसेज ये है कि इंशाल्लाह कहना चाहिए, है आसान था ना, कितना आसान था, इंशाअल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए?
इंशाअल्लाह।
पता है आपको कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंशाअल्लाह कहने के बारे में इरशाद फरमाया कि जब भी कोई काम आप फ्यूचर का करना चाहें तो उससे पहले क्या कहते हैं आप? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं इम्तिहान में पास होऊंगा, इंशाअल्लाह हम सब
मदीने जाएंगे।
वाह वाह वाह, कितनी प्यारी बात कह दी। इंशाअल्लाह कहने की बरकत ही होती है कि वो जो काम हो रहा होता है ना उसमें उम्मीद और ज़्यादा हो जाती है कि अब तो ये काम अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। तो इंशाअल्लाह भी हम कहेंगे, ये हमारा लास्ट मैसेज है। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपने सुनी। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उन्होंने तो नियत की है कि इंशाअल्लाह हम कहा करेंगे अपनी बात में, और इंशाअल्लाह मैंने भी इंशाअल्लाह कह दिया, और इंशाअल्लाह किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे। आप भी नियत कर लीजिए। और अगली कहानी कौन सी होने वाली है हमारी, वो सुनने के लिए हमारा जो अगला प्रोग्राम है उसके लिए इंतज़ार कीजिए और तैयार रहिए। इंशाअल्लाह आपके लिए एक और कहानी लेकर आएंगे। किड्स मदनी चैनल के और भी प्रोग्राम्स देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहानी
सुनो, कहानी
सुनो, कहानी
जल्दी जल्दी सुनो, कहानी सुनो, कहानी।